हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 4, 5 एंड 6। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीतांबरधरुणबिंबफल धरोष्ठात् पुरेन्द्रसुंदरमुखात् अरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न वेधो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो कल हमने पढ़ा कि शौनक मुनि सुत गोस्वामी से पुनः परीक्षित महाराज के विषय में पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उत्तरा के गर्भ पर उस समय उत्तरायाम हतो गर्भ ईशे ना जीवित पुनः, वो भगवान की कृपा से जो पुनः जीवित हो गया था, तो उसके तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना निधनम च यथैवासी सप्रीत्य गतवान यथा। बताइए तो सही, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या कर्म किए उन्होंने, उनका निधन कैसे हुआ और उनको क्या गति प्राप्त हुई। तो उन जनक मुनि ने कहा, तदिदं श्रोतमिच्छामि, मैं वो सब, हम वो सब सुनने की इच्छुक हैं, गदितुम यदि मन्यसे, अगर आप समझते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, यदि आप हमें योग्य समझते हैं, तो ब्रूहीन श्रद्धदानानां यस्य ज्ञानं वदा शुकः, जो ज्ञान शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया था वो ज्ञान हमें बता दीजिए, हम उसके सुनने के लिए अत्यधिक लालायित हैं, अत्यधिक उत्सुक हैं, उत्कंठा है हमारे हृदय में वो ज्ञान सुनने के लिए, बेचैन हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया उसके विषय में आप हमें बताइए। तो आज सुत गोस्वामी शौनक मुनि के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज के जन्म से पहले युधिष्ठिर महाराज के विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जब शौनक मुनि ने परीक्षित महाराज के विषय में पूछा है, तो सुत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज के बारे में क्यों कह रहे हैं। वास्तव में जो व्यक्ति जिस कुल में जन्म लिया है ना, उस कुल की कितनी महिमा, यानी भगवान जब किसी शुद्ध भक्त को कहीं पर जन्म दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कुल कोई साधारण नहीं होगा, जिसका भगवान श्री कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6.42 में भगवान कहते हैं, अथवा योगिनाम एव कुले भवन्ति धीमता। जो वास्तव में यदि कोई दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल होता है, तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम, ऐसे कुल में जन्म लेता है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। तो यहाँ परीक्षित महाराज का जिस कुल में जन्म हुआ था, वो पांडवों का कुल अर्थात जिसके अध्यक्ष है महाराजा युधिष्ठिर, तो महाराजा युधिष्ठिर की विषय में यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं। सुत उवाच अपि पलद्धर्मराज पितृवद्रञ्जयन् प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्य कृष्णपादानुसेवया अपि पलद्धर्मराज पितृवद्रञ्जयन् प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्य कृष्णपादानुसेवया अपि पलद्धर्मराज पितृवद्रञ्जयन् प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्य कृष्णपादानुसेवया। सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी कहने लगे, अपि पलद अर्थात शासित संपन्नता, जो महाराज युधिष्ठिर थे वो संपन्न राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट थे, उनके पास संपूर्ण पृथ्वी का वैभव था, तो भी पितृवद रंजयन प्रजा, वो पितृ की तरह अर्थात अपने पिता के समान प्रसन्न रखते थे, किसको, प्रजा को। तो जो भी उनकी प्रजा थी वो इतने अच्छे राजा थे कि अपनी सारी प्रजा को बच्चों की तरह रखते थे, परंतु उसका इतने बड़े राजा थे, इतना बड़ा भोग था, उतनी राज्य सामग्री थी उनके पास, परंतु फिर भी यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं निष्प्रिय सर्व कामेभ्य। निष्प्रिय का मतलब होता है किसी भी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं। महाराज युधिष्ठिर को किसी भी भौतिक भोग की कोई भी वस्तु की कोई लालसा नहीं थी। यहाँ पर उनको कहा गया है अपिपलद, वो सारी सृष्टि के राजा थे। यहाँ पर अगर हम देखें
तो जो साधारण व्यक्ति होते हैं, जिनके पास कोई भोग की सामग्री नहीं होती है, जो समृद्ध भी नहीं होते हैं, परंतु हृदय के अंदर भोग की इच्छा अवश्य होती है, लालसा तो वो रख सकते हैं, बोल सकते हैं ना भाई, लालसा रखने में क्या आवश्यकता है, क्या प्रॉब्लम है, इच्छा तो कर सकते हैं कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। परंतु महाराजा युधिष्ठिर जो थे, वो अभिपलत धर्मराज, पितृवत रंजन, सारी प्रजा जो है वो पिता की तरह उन्हें स्नेह करती थी और वो भी पुत्र की तरह अपनी प्रजा का पालन करते थे। परंतु वो व्यक्ति जो सम्राट है, जो समृद्ध है, जिनके पास संपूर्ण राज्य सामग्री है, परंतु फिर भी निस्पृह सर्व कामेभ्यो, कोई इच्छा नहीं उनके हृदय में, कोई कामना नहीं, इंद्र तृप्ति की कोई वासना नहीं, तो प्रश्न उठता है ऐसा कैसे हो गया ना? जिनके पास ज्यादा होता है उन्हें और भी ज्यादा काम भोग की इच्छा होती है, तो उनके हृदय में क्या ऐसा है कि कोई भी भौतिक वस्तु की इच्छा नहीं? तो यहाँ पर उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण पादानु सेवया, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करते थे, निरंतर उनका मन भगवान श्री कृष्ण के चरण विंदों में लगा हुआ है, तो भगवान के कृष्ण पादानु सेवया, वो भक्ति से तृप्त है, तो उनके पास इतनी, मतलब उनका राज्य इतना संपन्न था कि वो जो चाहते उनके चरणों में हाजिर हो जाता, परंतु कोई उनकी इच्छा ही नहीं थी, उनको भौतिक वस्तुओं की ओर कोई आकर्षण ही नहीं था। अनुवाद देखिए, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया, वे उनके पिता तुल्य थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जैसा कि इस ग्रंथ की भूमिका में कहा, स्टार्ट में श्री प्रभुपाद जी ने कहा था, भूमिका थी ना, कि सारा विश्व कृष्ण भावना के अभाव के कारण दुख भोग रहा है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, संसार के समस्त दुख जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण तत्व की आवश्यकताएं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर को इंद्र तृप्ति की इच्छा क्यों नहीं थी, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए थे, क्योंकि उनका मन कृष्ण में लगा हुआ था। आज यदि जीव केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही जी रहा है, तो इसका एकमात्र कारण है क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित नहीं हुआ है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, संसार के समस्त दुखी जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण तत्व की आवश्यकता है, और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एकमात्र विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। यदि जीव कृष्ण तत्व को ग्रहण कर लेता है, यदि कृष्ण की कृष्ण पादानो सेवा, कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेता है, तो जीव की समस्त भौतिक वासनाएं, समस्त भौतिक कामनाएं और समस्त भौतिक रोग समाप्त हो जाते। केवल पूरा विश्व यदि आज दुखी है, तो उसका केवल एकमात्र कारण यह है कि वो कृष्ण भावना के अभाव में है। कृष्ण भावनामृत के विषय में उसे नहीं खबर, अपनी वास्तविकता के अज्ञानता के कारण, देहात्म बुद्धि के कारण उसे दुख भोगना पड़ रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि जीव को अपना कल्याण करना है, यदि समाज का कल्याण करना है और विश्व भर का कल्याण करना है, तो कृष्ण तत्व को ग्रहण करना होगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे समझा रहे कि यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराजा युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग राम राज्य की लालसा करते हैं, क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे, और भारत के सारे राजा या सम्राट पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते हैं। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है, उनका व्युत्पत्ति परक आशय है। यहाँ पर जो प्रजा लिखा हुआ है पितृवत्रंजयन प्रजा, तो शीला प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रजा जो है, प्रजा जो शब्द है वो बहुत ही विशाल शब्द है। कैसे है? जो उत्पन्न हुआ है पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं। अब पृथ्वी पर जीवों की कितनी योनियां हैं? महाभारत में बताया जाता है जलजा नवलक्षाणी स्थावर लक्ष्य विशंति, यानी कि 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले और 20 लाख प्रकार के पौधे वृक्ष और वनस्पतियां इत्यादि। क्रमिया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के रेंगने वाले कीड़े मकोड़े और 10 लाख पक्षिणाम पक्षी जो उड़ते हैं वो 10 लाख और 30 लक्षाणी पशुओं 30 लैक्स पशु जो 4 पैरों पर चलते हैं तथा 4 लक्षाणी मानवा और 4 लाख प्रकार के मनुष्य। तो ये 84 लाख योनियों के विषय में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पृथ्वी पर जीवों के अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। वो सभी प्रजाएं किसकी प्रजा है? प्रजापति की प्रजा है। और प्रजापति कौन है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने समस्त जीवों की उत्पत्ति की है तो उसे प्रजापति कहा जाता है। क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सब के वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उससे अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर क्या है कि वो संपूर्ण सृष्टि की, तो महाराज युधिष्ठिर जो है वो सब जीवों की जितनी भी योनियां हैं उनकी पितृ की तरह सुरक्षा करते थे। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं राजा सभी जीवों पर, अर्थात जलचर पौधों वृक्ष सरीसृप पक्षी पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है। ये सब भगवान के अंश हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 14.4 में बताते हैं सर्वयोनिष कांतेय मूर्तयः संभवन्तिया तासां ब्रह्म महत्योनिर् अहम् बीज प्रदपिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और अहम् बीज प्रदपिता, मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं और भगवान का प्रतिनिधि होने से राजा सबों की उचित सुरक्षा, सबों को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। सारे जीवों पर कल्याण करना राजा का कर्तव्य है, किंतु आज की चरित्रविहीन प्रशासन पद्धति के राष्ट्रपतियों तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं को कोई सुरक्षा प्रदत्त नहीं की जाती है जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान रहती है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण तत्व समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक इस विज्ञान यानी तत्व का ज्ञान नहीं होता है तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसाधन की सनदें व्यर्थ होती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भले ही आप भौतिक जगत में कितना ही ज्ञान प्राप्त कर दो, कितनी ही डिग्री आपके हाथ में आ जाए, कितने ही आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाए, परंतु यदि आप कृष्ण तत्व को नहीं जाने हो तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान श्री कृष्ण की सतत भक्ति से कृष्ण पादानु सेवा, तो उन्होंने राज्य पर शासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। अभी बलद धर्म राजा पितृवद्रंजयन प्रजा, उन्होंने सारी प्रजा को पितृ की तरह पालना था, मतलब सबकी सुरक्षा सबको प्रदान की थी, परंतु फिर भी उनको कोई आसक्ति नहीं थी। निस्पृह सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानु सेवया। आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कभी कभी पिता अपने पुत्र पर अनावश्यक रूप से निर्दयी होता है, दिखता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि पिता ने पिता होने की योग्यता खोती है। पिता सदा पिता ही रहता है क्योंकि वह पुत्र के हित को सर्वोपरि रखता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। तो श्रीलम रूपा जी बोलते हैं, भले ही युद्ध करते हैं राजा, लेकिन वास्तव में उनका यही लक्ष्य होता है कि हर एक जो है वो वास्तविक कल्याण प्राप्त करे। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के विषय में श्रीलम रूपा जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि अतएव महाराजा युधिष्ठिर जैसे राजा जो सत्वगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, वे चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेषतया वे मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार के झंझटों से मुक्त हो सकें। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि साक्षात सत्व होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई किस में है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते थे, इंद्र तृप्ति के राक्षसी या आसुरी सिद्धांत पर नहीं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते वो भगवान के भक्त थे, सत्वगुण में रहते थे और जानते थे कि मनुष्य मात्र का कल्याण तभी संभव है जब वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे। तो इसी सिद्धांत पर वो शासन करते थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा न थी और इंद्र तृप्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। निस्प्रह सर्व कामेभ्य, भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए आज के राजा को अगर हम देखते हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं इत्यादि, उनको याद नहीं रहता है कि हम संसार में जो प्रजा है मेरी उनके कल्याण के विषय में कुछ पता है, बस किस प्रकार से मैं अधिक से अधिक भोग भोगूं, यही उनकी कामना होती है। बस जन सामान्य से वोट एकत्रित करके वो राजा तो बन जाता है, परंतु उस प्रजा के सत्कार के लिए, उस प्रजा की सदगति के लिए कोई कार्य नहीं करता। लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आदर्श राजा के रूप में उनकी कोई निजी आकांक्षा ना थी और इंद्र तृप्ति के लिए कोई स्थान ना था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा कृष्ण पादानुसेवया, परमेश्वर की प्रेम भक्ति में लगी रहती थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव पूर्ण के अंश स्वरूप है। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे अपना समय तथा शक्ति दोनों का उपव्यय मात्र करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे कि क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में लगी रहती थी। अब वो राजा है, उनकी इंद्रियां तो प्रजा की सेवा में लगी होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे कि उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रही थी, जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है। अब जीवों की, एक एक जीव की क्या सेवा करनी, वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे। और क्योंकि जीव पूर्ण के अंश हैं, जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे अपना समय तथा शक्ति दोनों, तो सारे जीवों को भी बोलते थे कि आपके दुख का मेन कारण क्या है कि आप भगवान से दूर हो, तो आप सब भी भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो। क्योंकि अगर वे, यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं कि वे लोग जो पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा करते हैं, अंश कौन है, जीव अंश है, और पूर्ण कौन है, भगवान पूर्ण है, तो केवल जीवों की सेवा करते रहे, भगवान को भूल जाए, तो वे अपना समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय करते हैं, अपने समय को भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी शक्ति को भी वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह कोई जड़ों को न सींच कर वृक्ष की पत्तियों को सींचे, यदि जड़ों में जल डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह से सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियों पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। अतएव महाराजा युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे, अतएव भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था ऐसी ही होती है। श्रील रूपा जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि जब तक राजा स्वयं भगवान की भक्ति नहीं करेगा और प्रजा को भगवान की भक्ति नहीं डराएगा, फिर चाहे वो कितने ही सुंदर कार्य क्यों ना करे भौतिक उन्नति के लिए, ये मटेरियल सक्सेस के लिए, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि वास्तविक जो उनके जीवन का लक्ष्य है वो तो वो पूरा कर ही नहीं रहे। लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति करता है और प्रजा को भी भगवान की भक्ति सिखा रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। अगर आज कोई जीव बोलता है कि हम अनाज ज्यादा उगाएंगे, फैक्ट्रियां ज्यादा करेंगे, लेकिन अनाज कहाँ से आएगा? पृथ्वी से आएगा। पृथ्वी में अनाज कैसे आएगा? अन्नात भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवा। प्रजन्य कहते हैं वर्षा को, तो भगवान कहते हैं अन्नात भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा कैसे? यज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म सु कर्म समुद्भवम्। कि वर्षा कहाँ से होती है? यज्ञ संपन्न करने से होती है। यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ का मतलब होता है भगवान को प्रसन्न करने से। तो यदि कोई भगवान को प्रसन्न करता है तो सारे के सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि राज्य प्रशासन की पूर्ण व्यवस्था ऐसी ही होनी चाहिए, जैसे कि महाराजा युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर करते हैं। आगे उनके विषय में और कहते हैं सूत गोस्वामी श्लोक नंबर 5 में, वे बता रहे हैं कि आखिर महाराज युधिष्ठिर के पास क्या क्या था, क्या क्या वैभव था, उसके विषय में कहते हैं। संपदः क्रतवो लोका महर्षि भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। संपदः क्रतवो लोका महर्षि भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। संपदः कृतवो लोका महर्षि भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। अर्थात संपदः कृतवो लोको, उनके पास क्या था? संपदा। संपदा मतलब अपार धन था उनके पास, बहुत बहुत ऐश्वर्य था, बहुत वैभव था उनके पास, बहुत संपत्ति थी। और कृतवो लोका, कृतवो मतलब क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत यज्ञ किए थे, तो उन्होंने बहुत बहुत वैभव प्राप्त किया था यज्ञों के द्वारा। क्योंकि जब हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म के प्रभाव से हमें बहुत बहुत पुण्य के प्रताप से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और इन पुण्यों के प्रभाव से हमें ये भी आश्वासन प्राप्त होता है कि यज्ञ करने से स्वर्ग का वैभव भी मिलेगा, है ना। मन में ऐसा होता है कि क्योंकि मैंने बहुत ही सुंदर यज्ञ किए हैं, बहुत अच्छे से कार्य किए हैं, कर्मकांड इत्यादि, तो उनके द्वारा मैं बहुत ज्यादा, है ना, वैभव संसार में भी मिलेगा और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग भी प्राप्त होगा। स्वर्ग का वैभव भी इच्छा तो कर सकता है ना, जो बहुत ज्यादा कार्य अच्छे करता है तो। और उन्हें क्या प्राप्त था? महिषी। महिषी का मतलब होता है पत्नी, अर्थात रानियां, उनकी बहुत ही श्रेष्ठ रानियां थी। संसार की सबसे श्रेष्ठ सुंदर स्त्री उनकी रानी थी, जिनका नाम था द्रौपदी। जिस प्रकार भगवान के शरीर से पद्म की सुगंध आती है, उसी प्रकार द्रौपदी के शरीर से भी सुगंध। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो यज्ञशयनी थी, वो अग्नि के द्वारा प्रकट हुई थी। वो महाराज युधिष्ठिर, वो इतनी ज्यादा गुणवती स्त्री थी और उनके अंदर इतना ज्ञान था, उतना उनके पास बुद्धि थी, कि जब महाराज युधिष्ठिर को भी कोई कार्य के बारे में पूछना होता था तो वो महारानी द्रौपदी से मंत्रणा करते थे, परामर्श लेते थे। वो द्रौपदी भगवान जिसको अपनी सखी कहने में अपना गौरव मानते थे, उस स्त्री के लिए कुछ भी कहा जाए तो कम है। वास्तव में इतना बड़ा जो महायुद्ध भगवान श्री कृष्ण ने करवाया था, उसका मूल कारण द्रौपदी का अपमान ही था। लेकिन इतनी सुंदर स्त्री होने के बाद भी उनके अंदर उसमें निष्प्रह, ये आगे यही बात चल रही है, निष्प्रह सर्व कामेभ्य, कोई आसक्ति नहीं थी ना संपत्ति में, ना अपने यज्ञों के द्वारा प्राप्त होने वाली किसी वैभव में, ना अपनी पत्नी में, और भ्रातरों यानी कि इनके बहुत ही इतने अच्छे उनके भाई थे जो उनके सारे कार्य, मतलब सर्वश्रेष्ठ संसार में जो मनुष्य थे वो इनके भाई थे, सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, नकुल और सहदेव जो उनके भ्राता थे, जो उनके एक आज्ञा के उपरांत अपनी जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन कोई आसक्ति नहीं थी। माही कहते हैं पृथ्वी की समस्त जो उपलब्धियां होती हैं उनको कहा जाता है माही, यानी कि अब संसार में जो कुछ भी किसी के पास भी है खाने के लिए, या जो कुछ भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं वो पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं, तो उस पृथ्वी के उत्पादन बहुत ज्यादा उत्पादन था क्योंकि राजा बहुत ज्यादा संपन्न था, लेकिन उनका कोई भी किसी भी वस्तु में कोई आसक्त, उनके पास क्या क्या था उसको गिना रहे कि सब संपदा थी, अपार धन था, बहुत बड़े बड़े उन्होंने यज्ञ किए थे, स्वर्ग के वैभव को जो है ना प्राप्त करना चाहते हैं वो जो कार्य करते हैं वो सारे कार्य उन्होंने किए थे, तो लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी, उनकी इतनी अच्छी सुंदर पत्नी थी, उनके भाई थे, पृथ्वी का सारा साम्राज्य जम्बू द्वीपाधिपत्यम च, यानी कि वह मंडल या लोक जिसमें हम रह रहे हैं उसको जम्बू द्वीप कहते हैं, ये पृथ्वी लोक जो है उसको कहा जाता है जम्बू द्वीप, तो ये पूरा जम्बू द्वीप जो है महाराजा युधिष्ठिर अंडर कंट्रोल में था, लेकिन और उसके बाद यशश्च त्रिदिवम गतम, उनका जो यश था, उनका जो वैभव था वो त्रिविदम यानी त्रिदिवम यानी स्वर्ग लोक तक, सारे लोकों में गतम, सारे लोकों में, पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में उनका यश था, यानी कि अभी इस संसार में क्या होता है, कोई अगर संपन्न राजा होता है तो केवल उसी के कंट्री में उसका यश होता है, उसी के बारे में उसको ही पता होता है, या फिर क्या होता है न्यूज़पेपर में कभी कभी दूसरे कंट्रीज का भी आ जाता है कि उस कंट्रीज के राजा ने ये किया है और उसके यश को संसार में इस तरह से बखान किया जाता है, लेकिन इसी पृथ्वी पर, और यश भी क्या, आज के जो तथागत राजा हैं उनका तो अपयश ही यहाँ पर हमें न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के विषय में बता रहे हैं यशश्च त्रिदिवम गतम, पृथ्वी का नहीं कि पृथ्वी के अतिरिक्त और अन्य लोकों में भी, और जैसे स्वर्ग में देवता उनके यश को गाते थे, पृथ्वी पर मानव और पाताल में महाराजा बलि इत्यादि उनके यश को गाते थे, आज का कोई राजा है उसका पृथ्वी के अतिरिक्त किसी लोक में नाम भी नहीं पता होगा किसी को, लेकिन महाराजा युधिष्ठिर इतने सर्वसंपद राजा थे कि यशस्य त्रिदिवम गतम, उनका यश जो था वो सारे तीनों लोकों में फैला हुआ था। अनुवाद, महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग और धरालोक पर उनकी प्रभु सत्ता तथा उनकी विख्यात आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे वंश में विख्यात होता है। जो महान पुरुष होते हैं, जो धनवान होते हैं, उन्हीं का यश फैलता है, तो महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियों, महिमामयी पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बू द्वीप में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्ग लोक तक पहुंच चुके थे। यहाँ लोका शब्द महत्वपूर्ण है, लोका लिखा हुआ है ना, संपदः कृतवो लोका, तो उसके लिए यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि शब्द भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए हैं, बहुत सारे लोक हैं, भौतिक आकाश में भी हैं और आध्यात्मिक आकाश में भी हैं, इस जीवन में भी कोई भी व्यक्ति अपने श्रम से उन तक पहुंच सकता है। अब क्या होता है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, इंद्रलोक है, तो परिश्रम के द्वारा वहां पर पहुंचा जा सकता है। और वो परिश्रम क्या है, भगवान श्री कृष्ण बताते श्रीमद् भगवत ये 9.25। भगवान क्या कहते हैं, जिधर जाना हो वहां के देवता की पूजा, वहां के जो स्वामी है उसकी पूजा शुरू कर दो। मतलब भगवान कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते च्या यान्ति मध्या जिनोऽपि माम। देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के बीच में रहते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों के पास जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं और मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो जिस जिसकी आप पूजा करते हो उसके पास आप आसानी से जा सकते हो। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिस भी लोक में आपको जाना है, आप केवल अपनी इच्छा के द्वारा या जोर जबरदस्ती करके उस लोक में नहीं जा सकते। जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने बाह्य अंतरिक्ष में कुछ हजार मील दूर तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, वे वहां प्रवेश नहीं कर सकते। उत्तम लोक में पहुंचने की विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। यज्ञ करेंगे, सेवा करेंगे, कर्मकांड के जो भी है ना, उपनिषदों और वेदों में जो कर्मकांड का भाग है उसको यदि पालन करेंगे तभी हम पात्र बनेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता में 16.19 में भी इसका उल्लेख है। भगवान बताते हैं 16.19 में, तानहं दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यज्ञस्र अशुभान् आसुरेष्वेव योनिषु। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हम क्रूर बने रहेंगे, निर्दयी बने रहेंगे, ईर्ष्यालु बने रहेंगे, उसके बावजूद भी हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बॉम्ब बांध देते हैं अपने शरीर पर, खुद अपना भी है ना विनाश कर देते हैं और किसी स्कूल में जाके बैठ जाते हैं या किसी जगह पे हॉस्पिटल में जाकर या कहीं पर, और बोलते हैं हम ना ऐसा करके जन्नत में जाएंगे। ऐसा ये कितनी आजकल मनुष्य की इतनी चेतना घृणित हो गई है। ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में थोड़े जाएंगे। भगवान बता रहे हैं, तान्यहं दुष्यतः क्रूरान् संसारेषु नराधमा। जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं, नराधम हैं, उन्हें क्या करता हूं, क्षिपाम या जस्रम अशुभान, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, आसुरी श्वेशु योनि, आसुरी योनियों में, भाव सागर में डालता रहता हूँ, उन्हें थोड़े ना स्वर्ग में डालूं। स्वर्ग में डालने के लिए भी यहाँ पर बता रहा है भगवान ने कहा कि ऐसे यज्ञ करेंगे, शुभ कर्म करेंगे, वैदिक कर्म कांड का पालन करेंगे, तब कहीं जाकर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे मतलब हिंसा करने में या बॉम्ब ब्लास्ट करने में किसी को भी स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगी। जो मासूम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिकाधिक भौतिक दुख भोगने की यह आशा करनी चाहिए। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्ग लोक के वासी भी उन्हें अपने समान मानकर उनका अभिनंदन करने को तैयार थे। तो यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर की इतनी सारी योग्यताओं के बावजूद भी कह रहे हैं, जब हालांकि उनके पास इतनी संपदा थी, उन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ कृत किए थे और उनकी इतनी सुंदर स्त्री थी, उनके भाई थे और उनके ना ये जम्बू द्वीप के आधिपत्य उन्हें प्राप्त था, और इस सब के कारण जो देवता थे वो भी उन्हें सम्मान देते थे, उनका अभिनंदन करते, तीनों लोकों में उनकी ख्याति बढ़ी हुई थी। तो परंतु फिर भी उन्हें भौतिक आसक्ति नहीं थी। उसका कारण क्या था? यहाँ पर बहुत ही सुंदर रीति से सुत गोस्वामी कहते हैं, किमते काम सुरस्पर्हा मुकुंद मनसो द्विजा अदिजर्हु मुदम राज अदिजर्हु मुदम राज्यः क्षुधितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पर्हा मुकुन्द मनसो द्विजा अदिजर्हु मुदम राज्ञ क्षुधितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पर्हा मुकुन्द मनसो द्विजा अदिजर्हु मुदम राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे किं ते कामः सुरस्पर्हा। किं ते कामः मतलब इतने उनके पास इंद्रिय भोग इतना था, इतनी उनका ऐश्वर्य था। सुरस्पर्हा, सुर कहते हैं देवताओं को, कि देवता भी उसकी आकांक्षा करते थे। इतना उनका वैभव था कि स्वर्ग के वासी उनकी आकांक्षा रखते थे कि इतना वैभव तो हमारा भी नहीं है। और मुकुंद मनसो द्विजा, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में सदैव उनका मन लीन रहता था, अधिजुर हो मदम राज्य, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी दुष्ट नहीं करना पड़ रहा था। किस प्रकार से? बहुत ही सुंदर यहाँ पर उदाहरण देते हैं, क्षुधितस्य यथेतरे। क्षुधितस्य मतलब जिस व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो, अगर 2-3 दिन से उसे खाना नहीं मिला हो तो वो तेज भूख लगी हो और अनाज के अतिरिक्त और उसे कोई भी चीज, अगर आप उसे बोलो कि आपको मैं बहुत ही सुंदर मोबाइल दे रहा हूँ या फिर कंप्यूटर दे रहा हूँ, मतलब 2-3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है, तो वो बोलेगा जिंदा रहूंगा तो फिर और कोई वस्तु चाहिए होगी ना मुझे। आप उसको बोलो कि मैं आपको चंदन का लेप लगा रहा हूँ, ये सुगंधित माला ले लीजिए, ये चीज ले लीजिए, लेकिन उसको क्या चाहिए होगा? सिर्फ और सिर्फ भोजन। उसी प्रकार यहाँ पर बता रहे सुत गोस्वामी कि जिस प्रकार किसी आदमी को कई दिन से खाना और जल नहीं मिला हो, उसको कुछ भी और नहीं चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ भोजन की लालसा होती है, उसी तरह से इतनी बल्कि उससे भी कई अधिक लालसा थी युधिष्ठिर महाराज की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। भगवान श्री कृष्ण से इतना ज्यादा प्रेम था जितनी सांस। महाराज युधिष्ठिर का मन मुकुंद मनसो द्विजा, हे द्विज श्रेष्ठ, उनका मन सदैव भगवान में लगा हुआ था और इसमें उनको इतना आनंद आता था। हालांकि किमते कामा सुरस प्राह, उनके पास जो वस्तुएं थी उनकी इच्छा तो देवता भी करते थे, लेकिन यदि किसी का दम, जैसे कोई किसी का गला दबा रहा हो तो उसको इतना इस घुटन हो रही होती है सांस लेने की, मतलब सांस भी नहीं ले सक रहा, तो उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती, क्या? कि मैं तड़पने लगता है कि मैं सांस लेना चाहता हूँ, सिर्फ सांस लेने की कामना होती है, इतनी ही कामना, बल्कि उससे भी कई अधिक कामना युधिष्ठिर महाराज की थी। वो भगवान के अनन्य भक्त थे और अनन्य भक्त का मतलब होता है कि कृष्ण के अतिरिक्त उसके मन में और कोई अभिलाषा नहीं हो। तो ऐसे निरासक्त राजा के विषय में बता रहे हैं, अनुवाद देखिए, हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के वासी भी उसकी आकांक्षा रखते थे, लेकिन चूंकि वे भगवान की सेवा में लीन रहते थे, अतएव उन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। तो ये तो वही अनुभव कर सकता है जिसको वास्तव में, अगर हमने हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि 2-3 दिन तक हमें खाना नहीं खाया हो, तो खाना के अतिरिक्त, भोजन के अतिरिक्त हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होगा, है ना? तो उतनी लालसा यहाँ पर बता रहा क्षुरितस्य यथेतरे, जिस प्रकार भूखी को केवल भोजन की आकांक्षा होती है, अभिलाषा होती है और कोई वस्तु से शांत नहीं कर सकती, उसी तरह जो भक्त होता है उसे केवल कृष्ण की ही आकांक्षा होती है, कृष्ण का नाम, कृष्ण का गुण, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की कथा, उसके अतिरिक्त किसी और वस्तु की उसके हृदय में कोई कामना रहती नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में दो वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें जीव की तुष्टि हो सकती है। इस संसार में दो चीजें ऐसी हैं जिससे जीव अपने आप को तुष्ट करने का प्रयास करता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब कोई भौतिकता में संलग्न रहता है तो वह इंद्रिय तृप्ति से ही तुष्ट होता है ना। अगर कोई भौतिक व्यक्ति होगा उसको भगवान की कथा सुना उसको आनंद नहीं आएगा, उससे क्या चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा, अच्छे से कपड़े चाहिए होंगे, घूमना फिरना, इंद्रिय भोग की आशा होती है, तो वो सोचेगा कि मैं इंद्रिय भोग नहीं मिलेगा तो फिर मैं भले कुछ भी मिल जाए उसे आनंद नहीं आएगा। किंतु जब कोई भौतिक गुणों से मुक्त होता है यानी वो आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच जाता है तो वह भगवान की तुष्टि के लिए प्रेमा भक्ति करके ही तुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीव स्वभावतः सेवक है ना, या तो इंद्रियों की सेवा करके खुश होगा या भगवान की सेवा करके। सेवा स्वाभाविक है, वो स्वभावतः सेवक है। अब श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने समझाई हमें कि चाहे तुम भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, लक्ष्य तो यही है, कार्य तो तुम्हें सेवा ही का करना है। तो बहिरंग शक्ति की दिशाओं में मोहग्रस्त होने के कारण वह अपने आप को सेव्य समझता है, जबकि वास्तव में वह सेव्य होता नहीं है। वह तो काम, इच्छा, क्रोध, लोभ, गर्व, उन्मत्तता तथा असहिष्णुता जैसी इच्छाओं का दास होता है। वो सोचता है कि मैं अभी सेव्य बन गया हूँ, मैं प्रभु बन गया हूँ, लेकिन वो तो अपनी इच्छाओं का दास हो जाता है, क्रोध का दास हो जाता है, लोभ का दास हो जाता है, काम वासना का दास हो जाता है। तभी तो ना चाहते हुए भी कार्य करने लगता है, तो वो दास ही है उसका स्वभाव। तो फिर या तो वो भगवान की सेवा करेगा या माया की सेवा, है ना, या तो उसे माया की सेवा करना पड़ेगा या मायापति की सेवा करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे जब वह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करके अपने होश में आता है तो वह अनुभव करता है कि वह भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपितु अपनी इंद्रियों का दास है। उस समय वह भगवत सेवा की याचना करता है और तब वह तथाकथित भौतिक सुख के द्वारा मोहग्रस्त हुए बिना सुखी बन जाता है। फिर क्या होता है, जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, जब उसे ये अनुभव हो जाता है कि मैं तो भौतिक जगत का स्वामी नहीं अपनी इंद्रियों का दास बनता जा रहा हूँ और इसके कारण मुझे केवल दुख ही भोगना पड़ता है, तो फिर उस समय वो क्या करता है, भगवत सेवा की याचना करता है। कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ए पुरुषोत्तम भगवान की आलादिनी शक्ति, थक गया हूँ मैं भौतिक वस्तुओं की सेवा करते करते, माया की गुलामी से मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझे भगवान की शरण में आकर भगवान के दासत्व को स्वीकार करके भगवान की सेवा करने का अवसर और योग्यता प्रदान कीजिए। और जब उस प्रकार उसे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है, महाराज युधिष्ठिर मुक्त आत्मा थे, अतएव उन्हें विशाल साम्राज्य से, उत्तम पत्नी से, आज्ञाकारी बंधुओं से, सुखी प्रजा से तथा संपन्न जगत से कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी। ये सब था उनके पास। यहाँ पर बताया हमें कि उनके पास संपदः कृतवो लोको महिषी भ्रातरामहि, उसके पास सब कुछ था, लेकिन ये सब वस्तुएं उन्हें संतुष्ट नहीं कर रही थी। शुद्ध भक्त को ये वर स्वतः प्राप्त होते हैं भले ही वह उनकी कामना ना करे। यहाँ पर दिया गया दृष्टांत अत्यंत ही उपयुक्त है। कहा जाता है कि भूखे को भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की से संतुष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है उसे केवल एक ही लालसा होती है कि मैं किस प्रकार से कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं, किस प्रकार से कृष्ण के साथ जुड़कर अपने संबंध को पुनः निर्माण कर सकूं, तो भौतिक आसक्ति उनको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। सारा संसार भूखे जीवों से परिपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत सुंदर व्याख्या करेंगे भूखे जीवन की। भूखे जो जीव होते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी को तो सारे संसार में हर जगह पर भूखे जीव ही नहीं नजर आ रहे, पूरा संसार भूखे जीवों से परिपूर्ण है। यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय या इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। संसार में सारे भूखे, या तो उन्हें क्या चाहिए, आहार, निद्रा, वही मैथुन। लेकिन श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भूखे तो हैं, मगर यह भूख उत्तम भोजन, आश्रय, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। भूख तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए है। वास्तविक जो हृदय में ये जो तृष्णा है, जो संतुष्ट नहीं हो रही है किसी भी भौतिक वस्तु से, वो इन भौतिक वस्तुओं की भूख है ही नहीं, वो तो आध्यात्मिक वातावरण के लिए भूख है। अज्ञानवश लोग सोचते हैं कि संसार असंतोष से व्याप्त है, क्योंकि पर्याप्त भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के विषय में उपलब्ध नहीं है। यहाँ श्री प्रभुपाद सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, वो अज्ञान है, उनको पता ही नहीं है, वास्तविक ज्ञान के विषय में नहीं जानते, इसलिए सोचते हैं अगर मनुष्य को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाएगा, पर्याप्त मात्रा में आश्रय मिल जाएगा, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा और पर्याप्त मात्रा में इंद्रिय तृप्ति का भोग उन्हें प्राप्त हो जाएगा, तो वो सुखी हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये मोह है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके आनंद को प्राप्त करो। बड़े बड़े कंट्रीज होते हैं जिनमें हर एक वस्तु आपको बहुत ही आसानी से प्राप्त होती है। क्या आप समझते हैं कि वहां के लोग बहुत ज्यादा सुखी होंगे? संभव नहीं। श्रील प्रभुपाद जी कहते यह तो मोह है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं, हमें ध्यान से सुनना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते जब जीव परिलक्षित आध्यात्मिक तुष्टि के लिए भूखा होता है, तो लोगों को उसमें भौतिक भूख दिखती है, लेकिन मूर्ख नेता यह भी नहीं देख पाते कि जो लोग भौतिक दृष्टि से पूरी तरह से तृप्त हैं, वे फिर भी भूखे रहते हैं और उनकी भूख तथा विपन्नता है क्या? यह भूख वस्तुतः आध्यात्मिक भोजन, आध्यात्मिक आश्रय, आध्यात्मिक सुरक्षा तथा आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति के लिए होती है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार में भले ही वो संपन्न क्यों न हो जाए, लेकिन फिर भी उनकी भूख समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो ये तथाकथित नेता होते हैं, ये संसार के मूर्ख लोग ये जान ही नहीं पाते कि वास्तविक भूख है क्या, वास्तविक वो कौन सी तृष्णा है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तविक वस्तुतः जो भूख है वो आध्यात्मिक भोजन अर्थात भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन, आध्यात्मिक आश्रय अर्थात भगवान श्री कृष्ण के शरण, आध्यात्मिक सुरक्षा अर्थात श्री कृष्ण का सानिध्य और आध्यात्म इंद्र तृप्ति अर्थात भगवान की सेवा। तो उन्हीं से एक व्यक्ति, एक जीव जो है वो संतुष्ट हो सकता है। उन्हें परम आत्मा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और जिनके पास ये वस्तुएं हैं वे भौतिक जगत के तथाकथित भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा आकर्षित नहीं होते, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज के पास ये सब वस्तुएं हैं। आध्यात्मिक तृप्ति है, इसे भौतिक इंद्र तृप्ति की ओर कोई आकर्षण नहीं है। निष्प्रह सर्व कामे भी, यद्यपि स्वर्ग के वासी भी इनका आनंद लूटते हैं। अतएव श्रीमद भगवद गीता 8.16 में भगवान ने कहा, क्या आब्रह्म भुवना लोका पुनरावृति नोर्जुन माम उपैत्यत कुंते पुनर्जन्म न विद्यते। उसमें भगवान ने कहा है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी, जहाँ जीवन अवधि यानी आयु पृथ्वी की गणना से कई लाख गुना होती है, जीव अपनी भूख नहीं बुझा सकता, उसे वहां पर भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, तो फिर इस भौतिक जगत में भौतिक धरातल पर रहकर उसको आनंद कैसे हो सकता है? तो ऐसी भूख तभी शांत होती है जब जीव अमरता को प्राप्त करता है, जिसे वैकुंठ लोक में ही, जो ब्रह्म लोक से भी काफी दूर है, उन भगवान मुकुंद के सानिध्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो अपने भक्तों को मुक्ति का दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसी भी लोक में चले जाओ, ये पृथ्वी तो कुछ भी नहीं है, उससे करोड़ गुना सुख है स्वर्ग लोक में, और उससे भी करोड़ गुना सुख है ब्रह्म लोक में, लेकिन वहां पर भी चले जाओगे तो भी आनंद प्राप्त नहीं होगा। पुनरावृत्ति न अर्जुन, आनंद प्राप्त नहीं होगा, संतोष प्राप्त नहीं होगा। यदि संतोष प्राप्त होगा तो कहाँ पर? मुकुंद मनसोदिजा, भगवान मुकुंद जो भगवान श्री कृष्ण है, जो मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, उनकी उनके अंदर यदि हम अपना मन लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण करते हैं और उनके पवित्र नाम का जप करते हैं, तो हमारे समस्त भौतिक और समस्त आध्यात्मिक हर एक इंद्रिय तृप्त हो जाती है। फिर कोई भी इच्छा नहीं रहती, जिस प्रकार से ये युधिष्ठिर महाराज क्या है, निष्प्रिय सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवय, भगवान की सेवा करके हमारी हर एक कामना पूर्ण हो जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।